मेरे प्रिय युवा मित्रों नमस्कार। आज 11 जून 2019 है और आज के इस afeis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उस एक नौजवान साथी का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन मित्र का नाम है तेजस पुरुषोत्तम पिपारे, आपका गांव है चमरोशी, जिला गढ़चिरौली, महाराष्ट्र। दोस्तों, मुख्य विषय के रूप में मैं कल के ही विषय को आगे बढ़ाना चाहूंगा, उसे आप नाम दे सकते हैं कि लेखों के अध्ययन का तरीका। इस पर मैं कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं। न्यूज आपने सुनी है, एक बहुत ही दुखद खबर जो कल आई वो थी गिरीश कर्नाड के निधन की। तो मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, अपनी पत्नी प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से गिरीश कर्नाड जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें वह अपने शरण में जगह दे। दोस्तों, गिरीश कर्नाड से मैं बहुत प्रभावित रहा हूं और मैं इसलिए ये श्रद्धांजलि नहीं दे रहा हूं कि मैं ही बहुत प्रभावित रहा हूं, बल्कि पूरा हिंदुस्तान उनसे बहुत प्रभावित रहा है। जब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे उस समय गिरीश कर्नाड हम जैसे लोगों के लिए एक मापदंड जैसे थे। ये उन बहुत थोड़े से लोगों में हैं जो फिल्म से जुड़े हैं, सीरियल से जुड़े हैं, लेकिन लिख भी रहे हैं और सब एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की जिनमें बौद्धिक तीक्ष्णता भी है। ये बेसिकली इंटेलेक्चुअल किस्म के पर्सन थे और मुझे इस बात का सौभाग्य रहा है कि मैंने इन्हें सामने सुना है। बहुत ही जबरदस्त किस्म की बौद्धिक प्रखरता, और यदि आप इनके लिखे हुए नाटक पढ़ेंगे तो दंग रह जाएंगे। समझ में नहीं आता कि उतनी कम उम्र में गिरीश कर्नाड इस तरह के नाटक लिख कैसे सकते लेते थे। वो खासकर हमारे मिथक जो पौराणिक कथाएं हैं उनको आधार बनाते थे और उसे आधुनिक संदर्भों में प्रस्तुत करते थे। बहुत ही अद्भुत प्रतिभा और व्यक्तित्व के धनी गिरीश कर्नाड। दोस्तों, सिविल सर्विस में इन पर कुछ लिखने को तो नहीं आएगा, लेकिन दूसरे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि गिरीश कर्नाड क्या थे, तो आपको थोड़ा सा ध्यान इस पर देना चाहिए। आज जो भी उनके बारे में आर्टिकल्स छपे हैं उन्हें एक बार पढ़ जाइए, दिमाग में आपके वो तथ्य दर्ज हो जाएंगे और उतना ही पर्याप्त होगा। एक और न्यूज आपने सुनी शंघाई सहयोग संगठन को लेकर के, वो न्यूज काफी दिन से चल रही है और खासकर इसके तहत जो बात कही गई कि जब हमारे प्रधानमंत्री वहां जाएंगे तो वहां जाने के बाद वो बकायदे रूस और चीन के राष्ट्रपति से मिलेंगे, लेकिन वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से नहीं मिलेंगे। यानी कि अभी तक कोई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलने का कोई प्रोग्राम नहीं है। उसी में एक लाइन और भी थी जो सामान्यतः सुनने में हम सबसे मिस हो जाती है, और मैं समझता हूं कि मेरा धर्म या दायित्व यही है कि वे लाइनें जो स्टूडेंट से मिस हो जाती हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, मैं उधर आप सबका ध्यान आकर्षित करूं। उसी न्यूज में एक लाइन थी कि यह जो संगठन है शंघाई सहयोग संगठन पश्चिमी एशियाई देशों के साथ संबंध स्थापित करने के मामले में बहुत महत्वपूर्ण संगठन है और भारत जो ईस्ट पॉलिसी को लेकर के चल रहा है, पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बहुत मजबूत बनाने की बात कर रहा है, उस लिहाज से आप इस शंघाई सहयोग संगठन के महत्व को समझ सकते हैं। और वैसे भी ये एक ऐसा संगठन है जिसमें भले ही 8 देश हों लेकिन वो विश्व के लगभग 42% पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि अपने आप में एक इंपॉर्टेंट संगठन है। इसी के साथ ही साथ आपने G20 देशों की जो भी मंत्री स्तरीय बैठक चल रही है जिसमें हमारे मंत्री पीयूष गोयल जी गए हुए हैं, उसके बारे में भी आपने खबर सुनी है। ऐसे समय में होता यह है कि आप G20 जैसे अभी बैठक चल रही है तो थोड़ा सा उसके बारे में जान ले कि ये G20 क्या है। और वैसे भी G20 वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन हो गया है। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 यानी कि 20 राष्ट्रों का समूह, इसमें 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन उनका सेंट्रल बैंक है, 20 देशों का समूह है। और देखिए, जब मैं यूरोपियन यूनियन कह रहा हूं तो यूरोपियन यूनियन में तो यूरोप के देश हैं, लेकिन याद ध्यान दीजिएगा कि उसमें यूरोप के बहुत से देश ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंटली इसके मेंबर हैं, जैसे ब्रिटेन इसका अलग से मेंबर है, जर्मनी इसका अलग से मेंबर, हालांकि यूरोपियन यूनियन में भी है, अभी तक तो ब्रिटेन अलग नहीं हुआ है। तो ऐसे कुछ देशों के भी नाम आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन जो देश और इसके व्यक्तिगत तौर पर मेंबर नहीं है वो यूरोपियन यूनियन के माध्यम से इसके मेंबर हैं। इसकी ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि दुनिया का जो कुल प्रोडक्ट है, विश्व का जो कुल उत्पाद है, उसका 90% केवल ये 20 देश कर रहे हैं, 90%। और विश्व व्यापार में इनका जो कंट्रीब्यूशन है या जो पार्टिसिपेशन है वो 80% है। दुनिया की 2/3 आबादी इन 20 देशों में रहती है और लैंड एरिया का लगभग 50% ये 20 देश कवर करते हैं और दुनिया में कुल 200 के करीब देश हैं। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ग्रुप होगा ये जो ग्रुप है। दोस्तों कुछ स्टूडेंट को एक कंफ्यूजन हो जाता है कि G20 में केवल डेवलप्ड कंट्री हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान जैसे डेवलप्ड कंट्री, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें डेवलप्ड कंट्री हैं जो बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गए हैं और साथ ही साथ डेवलपिंग कंट्री भी है जैसे कि भारत, ये भी इसके मेंबर हैं। इसकी जब शुरुआत की गई थी 1999 में, तब बेसिकली ये था कि इनस्टेबिलिटी बहुत होती थी, फाइनेंशियल मार्केट में बहुत ज्यादा अस्थिरता होती थी, तो इन लोगों को लगा कि नहीं ये अस्थिरता ठीक नहीं है, तो इसे कैसे स्थिर रखा जाए इसके बारे में बातचीत करने के लिए एक फोरम बनाया गया। लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बदला तो 2008 में आते आते इसमें और भी बहुत से मुद्दे जुड़ गए और उसमें फिर ये हो गया कि जो औद्योगिक देश है और जो विकासशील देश है वो वर्ल्ड मार्केट के बारे में, वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में जितनी भी किस्म के मुद्दे आएंगे, इश्यूज आएंगे, उन सब पर वो फिर बहस करेंगे, बातचीत करेंगे। तो G20 अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। फ्रेंड्स आपने न्यूज में यह भी सुना होगा कि 1 अप्रैल 2020 से जो टू व्हीलर है उसमें BS6 मानक शुरू कर दिया जाएगा। चूंकि साइंस से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो बी का मतलब है भारत, एस का मतलब है स्टैंडर्ड, हिंदी में आप कहेंगे भारत मानक 6। 6 इसलिए रखा गया कि 1, 2, 3 से शुरू हुआ था। भारत में सबसे पहले 2010 में BS3 शुरू किया गया था, फिर धीरे बढ़ाते 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 अब BS6 अप्रैल 2020 से शुरू किया जाएगा। इसके दो पक्ष हैं केवल, एक तो यह है कि BS6 में जो इसमें खासकर जो पार्टिकुलेट मैटर निकलते हैं वो मैटर थोड़े से कम निकलते हैं और दूसरा वायु प्रदूषण भी कम होता है, यानी कह लीजिए इंजन से जो प्रदूषण फैलाने वाले जो गैसेज निकलती हैं, जो उत्सर्जन होता है वह भी कम होता है। तो इनफैक्ट इसका संबंध जो है वायु के प्रदूषण को नियंत्रित करने से है, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। फ्रेंड्स आइए अब मैं आज के मुख्य विषय पर आता हूं। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि कुछ स्टूडेंट ने जो मैंने तरीका बताया था उस तरीके को अपनाया और उससे भी ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि उन्होंने केवल अपनाया ही नहीं बल्कि जो अपनी प्रतिक्रियाएं दी वो आश्चर्य पैदा करने वाली प्रतिक्रिया थी। आश्चर्य पैदा करने वाली में मतलब उन्होंने जो परिवर्तन अपने अंदर महसूस किया वो बिल्कुल वही परिवर्तन थे जो मैं आपको बताने वाला था। और ये मेरे लिए बेहद खुशी की बात इसलिए हुई कि मुझे ये लगा कि नहीं, मैंने जो बताया वह व्यावहारिक रूप में भी सच है। यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा मित्रों कि कल मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि देखिए बहुत इत्मीनान से पढ़िए, धीरे धीरे सुनिए और सुनने के बाद उस पर थोड़ी देर विचार कीजिए। मैंने ये कहा, कल ही मुझे कुछ ऐसे मेल मिले जिसमें मैं एक मेल का खासकर से चर्चा करना चाहूंगा कि एक ग्रुप है जो स्टूडेंट नहीं बल्कि वो सर्विस भी कर रहे हैं और वो IAS की तैयारी भी करना चाह रहे हैं, तो उनके बिहाफ पर एक स्टूडेंट ने मुझे लिखा कि सर वो लोग कह रहे हैं कि ये बहुत लंबा हो जाता है और उनके पास इतना समय नहीं है, तो ये जो 12-13 मिनट का जो आपका डेली ऑडियो लेक्चर है इसमें कुछ अगर स्पीड मोड टैब लगा दिया जाए तो उसको जल्दी जल्दी सुन लेंगे, मतलब 7-8 मिनट में निपटा देंगे तो उनके लिए सुनना आसान हो जाएगा, कुछ आप ऐसा मैकेनिज्म बना दीजिए। मैं सुनकर के पढ़ करके दंग रह गया मित्रों। सच बात तो यह है देखिए कि अगर सच में कोई स्टूडेंट इतना महत्वपूर्ण नौकरी कर रहा है कि वो 12 मिनट एक ऐसी ऑडियो को नहीं सुन सकता जिसकी वो जरूरत महसूस कर रहा है, या तो छोड़ दीजिए, आप पढ़िए, सुनिए ही मत, बहुत सी चीजें वो कर लीजिए, लेकिन अगर इसके लिए 12 मिनट नहीं है तो दूसरी चीजों के लिए कितने मिनट होंगे, तो इसका मतलब है कि आप बहुत महत्वपूर्ण काम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो IAS ही सब कुछ नहीं है, फिर आप क्यों उसको छोड़ना चाहते हैं भैया, अगर आप 12 मिनट 15 14 मिनट भी नहीं निकाल सकते तो, और फिर आप केवल सुन करके उसका कर्मकांड पूरा करना चाह रहे हैं या उसे कुछ सीखना भी चाह रहे हैं, सुनने का पर्पज क्या है, केवल आत्मसंतोष का अनुभव करना कि यार ये निपटाना था चलो निपटा दिया। जब भी हम निपटाने की भावना से किसी भी पढ़ाई को करते हैं तो हमें इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि वह भावना एक दिन हमें निपटा देगी, ये खेल नहीं है, IAS की परीक्षा खेल नहीं है, इसके बारे में बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए। खैर तो दोस्तों जब आपने ये अब उस पैटर्न से पढ़ा होगा तो देखिए कई चीजें आपको बहुत मजेदार मिली होंगी, जिसका उल्लेख स्टूडेंट्स ने अपने मेल में किया है। पहली बात तो यह कि आपको यह सब करने के बाद, जब आपने बकायदे सिलेबस देखा, आपने जब बकायदे प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखे और फिर इस आर्टिकल को पढ़ा, तो आपके दिमाग में एक जबरदस्त रूप से बल्ब जल गया कि अरे बाप रे, जो प्रीवियस पेपर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस के बहुत से उत्तर, कई क्वेश्चंस के उत्तर इस एक छोटे से लेख में है। और ये लेख है कितना बड़ा, 1.5 पेज का। इसका मतलब है कि जैसे ही आपको पता लगता है कि नहीं, उसके बहुत से उत्तर इसमें हैं, तो आप सतर्क हो जाते हैं, इसे बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, टुकड़े टुकड़े में बांट करके पढ़ते हैं, फिर आप सिक्योरिटी को डिवाइड करते हैं। पहला, हिंद महासागर में हमारी सुरक्षा को क्या चुनौतियां मिल रही हैं और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। दूसरा, बॉर्डर पर जो आतंकवादी समस्याएं हैं, वो हमें कैसे चुनौतियां मिल रही हैं, उसके लिए हम इसमें से अलग से पॉइंट्स निकालते हैं, जो पाकिस्तान वगैरह के मामले में है। जब हम महासागर ये देखते हैं, तो हम हिंद महासागर को देखते हैं, जो चीन से हमें चुनौतियां मिल रही हैं। इसके बाद फिर हम साइबर वाले मामले में देखते हैं, और साइबर तो बकायदे आपके सिलेबस में अलग से मेंशन किया होगा, एग्जाम में भी पूछा है। अब आप पढ़ रहे हैं बकायदे की हुआवई को लेकर के, अभी चीन और अमेरिका के बीच में बहुत द्वंद्व चल रहा है, हुआवई जो उपकरण, जो खासकर दूर संचार उपकरण प्रदान करने वाला दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अब भारत को यह डिसाइड करना पड़ेगा कि वो अपने संचार माध्यमों के लिए, नेटवर्क के लिए, बकायदे वो चीन से जुड़ना चाहेगा या अमेरिका से जुड़ना चाहेगा, क्योंकि हमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, गुप्त सूचनाएं मिलेंगी, वो इसी संचार नेटवर्क से मिलेंगे। अब हम अमेरिका के नेटवर्क पर विश्वास करें या चीन के नेटवर्क पर विश्वास करें, ये चीजें आपको कहां पढ़ने को मिलेंगी, किताबों में नहीं मिलेंगी, क्योंकि उस समय ये बात ही नहीं थी, किताब अपने ढंग से लिखी जाती है, वो सब के सब आपको इस आर्टिकल में मिल जाएंगे। दूसरी बात कि बहुत सी चीजें जो हम पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं, भले ही उनका उल्लेख इस आर्टिकल में नहीं है, लेकिन इस आर्टिकल को समझने में हमारी मदद करता है। लेकिन वो मदद आप तब ले पाएंगे जब आप इसे इत्मीनान से पढ़ेंगे, और इत्मीनान से तब पढ़ेंगे जब आप इसे महत्वपूर्ण समझेंगे, और महत्वपूर्ण कब समझेंगे, जब आप बकायदे सिलेबस और प्रीवियस ईयर्स के पेपर देखेंगे। बकायदे सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इसमें मान लीजिए कि आ गया डोकलाम विवाद, अब आपको लगेगा कि भैया डोकलाम विवाद क्या है, वुहान सम्मेलन, इन सब रेफरेंसेस में आए हुए हैं, तो आपको लगेगा कि ये वुहान सम्मेलन क्या है। अब देखिए कि आप कितनी चीजों को इसमें दोहरा सकते हैं। फिर मसूद मजहर का नाम इसमें बकायदे आया हुआ है कि कैसे चीन ने अंततः उसको विश्व आतंकवादी करार दिया और भारत को कैसे इसमें सफलता मिली, तो ये सब आपके पीछे की उन घटनाओं को एक तरीके से रिविजन करने का अवसर है कि आप उन्हें रिवीजन कर रहे हैं और देखिए कि वो जो छोटी छोटी घटनाएं थी, जो अपने आप में इंडिपेंडेंट भी हैं, लेकिन यहां इंडिपेंडेंट घटना के रूप में वो काम नहीं कर रही हैं। आर्टिकल के कोई पूछे गए प्रश्न के उत्तर लिखने के रूप में वो एक एक तथ्य के रूप में आपकी मदद कर रही हैं। ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की सही पढ़ाई करने का दोस्तों तरीका होता है। इसीलिए सिविल सर्विस के बारे में कहा जाता है कि भले ही कम पढ़िए, भले ही नहीं बल्कि कम ही पढ़िए, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। यह सिविल सर्विस की पढ़ाई का सबसे मूल मंत्र होता है। तो दोस्तों, इस विषय को अब मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब इसे देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं, और उन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम है, शिवम पांडे, आदर्श पांडे, आकांक्षा नागपुर से, अविनाश शर्मा, सुधीर ओंकारा नई दिल्ली से, उर्वशी पाराशर, रोहिताश गुर्जर और सौम्या जैना, आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।